आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मौजूदा बजट इजलास में वक्फे के लिए आज मुलतवी हो जाएगी। अगले महीने की 9 तारीख को फिर इजलास शुरू होगा। रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए वसीतर कर्जे की सहूलत की खातिर किसान क्रेडिट कार्ड के जाब्तों के मुसव्वदे पर नजरसानी की है। आज दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत हासिल होने का दावा किया है। बाजाब्ता नतीजों का ऐलान अभी होना बाकी है। कौमी राजधानी में आज से एक माह तवील स्पोर्ट्स फेस्टिवल दिल्ली खेल महाकुंभ शुरू हो रहा है और मर्दों के T20 क्रिकेट आलमी कप में नई दिल्ली में खेले गए मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से करारी शिकस्त देकर रनों के एतबार से उसकी सबसे बड़ी जीत है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मौजूदा बजट इजलास में वक्फे के लिए आज मुलतवी हो जाएगी। इसके बाद इजलास दूसरे मरहले में अगले महीने की 9 तारीख को फिर शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। बजट इजलास 2 मरहलों में हो रहा है। पहले मरहले का आगाज 28 जनवरी को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से हुआ था। कल वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में मरकजी बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि सरकार मुआशी तरक्की को बढ़ावा देकर और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाकर एक मजबूत और खुदकफील भारत की तामीर पर तवज्जो मरकूज कर रही है। अदद शुमार से मुतालिक कौमी दफ्तर के तखमीनों को हवाला देते हुए वजीर खजाना ने कहा कि साल 2025-26 में मुल्क की GDP की शरह तरक्की 7.4% रहने का अंदाजा लगाया गया है।
द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस गेव द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट द रियल GDP ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 7.4% फॉर द ईयर 25-26 with a nominal growth rate at around 8%, while CPI inflation has softened to nearly 2%. So this is that combination that I'm talking about of a strong growth, price stability is really uncommon globally and reflects the strength of India's economic fundamentals.
दूसरी तरफ लोकसभा में हुकुमरान इत्तेहाद और अपोजिशन अरकान के दरमियान शोरगुल के मनाजिर देखने में आए, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। हंगामा आराई के दौरान ऐवान में सनती ताल्लुकात के जाब्तों से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर होने के बाद फौरी अवामी अहमियत के हामिल मामलात उठाए गए। आज पार्लियामेंट में भारत के सियाहत के शोबे की जामे तरक्की से मुतालिक ट्रांसपोर्ट, सियाहत और कल्चर के बारे में कायमा कमेटी की रिपोर्ट दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर कानून साजी के कामकाज पर भी बहस होगी, जिसमें कई अरकान मुख्तलिफ बिल पेश करेंगे। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर यह कहते हुए शदीद नुक्ताचीनी की है कि जनाब राहुल गांधी को मुल्क के किसानों की कभी कोई फिक्र नहीं रही। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब चौहान ने कहा कि किसानों को बाख्तियार बनाए जाने से राहुल गांधी को कभी भी खुशी नहीं हुई और उन्हें बार बार मुल्क मुखालिफ बयान देते हुए देखा जा रहा है। वजीर ज़राअत ने कहा कि जनाब राहुल गांधी ने झूठ बोलने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वो झूठ फैलाकर लोगों में इबहाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई, वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका के साथ हाल ही में दस्तखत किए गए समझौते में किसानों के मफादात का पूरा ख्याल रखा गया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर गलत बातें फैलाने और बेबुनियाद इल्जामात लगाने का इल्जाम आयद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि राहुल गांधी फर्जी बातों के जरिए किसान बिरादरी को गुमराह करने और उन्हें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار نے مختلف اسکیموں اور پالیسی فیصلوں کے ذریعے کسانوں کی بہبود اور خوشحالی کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ تجارتی سمجھوتے میں ملک کے کسانوں کے مفادات کو پورا تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی قومی راجدھانی میں آج سیوا تیرتھ کمپلیکس کی عمارت کے نام کی نقاب کشائی کریں گے۔ جناب مودی سیوا تیرتھ اور کرتویہ بھون 1 اور 2 کا باضابطہ طور پر افتتاح کریں گے اور سیوا تیرتھ میں ایک عوامی پروگرام سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ افتتاح ملک کے انتظامی حکمرانی نظام میں کایا پلٹ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمرانی کے جدید مؤثر قابل رسائی اور شہریوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک ایکو نظام قائم کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عہد کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
سیوا تیرتھ کمپلیکس میں وزیر اعظم کا دفتر، قومی سلامتی کونسل کا سیکرٹریٹ اور کابینہ سیکرٹریٹ ہوں گے، جو سبھی اس سے پہلے الگ الگ مقامات پر تھے۔ کرتویہ بھون 1 اور 2 میں کئی اہم وزارتوں کے دفاتر ہوں گے، ان میں محکمہ خزانہ، دفاع، صحت، خاندانی بہبود، تعلیم، نیز، اطلاعات و نشریات کی وزارت کے دفاتر شامل ہیں۔ دونوں عمارتوں میں ڈیجیٹل اعتبار سے مربوط دفاتر، عوام کی سہولت کے لیے مخصوص زون اور مرکزی استقبالیہ مراکز بھی ہوں گے۔ ان سہولیات سے تال میل، صلاحیت، بلا رکاوٹ انتظامیہ اور لوگوں کے لیے بہتر انتظامات میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا جامع فریم ورک بھی ہوگا، جس میں رسائی کے لیے اسمارٹ کنٹرول نظام، نگرانی نیٹ ورک اور جدید طرز کا ایمرجنسی بنیادی ڈھانچہ بھی شامل ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
بھارتیہ ریزرو بینک RBI نے کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم کے لیے ضابطوں کا نظر ثانی شدہ مسودہ جاری کیا ہے، جس میں مٹی کی جانچ، موسم کی پیش گوئی اور نامیاتی سرٹیفیکیشن جیسے زرعی تکنیکی اقدامات کے اخراجات کو زرعی قرض کے اجزاء کے تحت شامل کیے جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس مسودے میں زراعت اور اس سے وابستہ معاملات کے لیے 2 لاکھ روپے تک کا قرض لینے والے ہر شخص پر سے قرض کی ضمانت اور فرق کی ضرورتوں کو ہٹائے جانے کی بھی تجویز پیش کی گئی ہے۔ دفاعی سازوسامان کی سرکاری خرید سے متعلق کونسل DAC نے مسلح افواج کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے تقریباً 3,60,000 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 1946 میں اقوام متحدہ ریڈیو کے قیام کی یاد میں ہر برس 13 فروری کو اس دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ریڈیو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI ایک ٹول ہے، آواز نہیں۔ ریڈیو کے عالمی دن 2026 کے موقع پر یونیسکو کے ساتھ اشتراک میں آکاشوانی رائے پور آج ورلڈ ریڈیو ڈے کانکلیو کا انعقاد کر رہا ہے۔ یہ کانکلیو موضوع سے ہم آہنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ٹیکنالوجی مدد فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہی برقرار رہنی چاہیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
آکاشوانی اپنے آغاز کے بعد سے ہی بہوجن ہتائے، بہوجن سکھائے کے مقصد کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ 1936 میں قائم اور آزادی کے بعد سرکاری ملکیت کے تحت کام کر رہا آکاشوانی جتنی زبانوں میں نشریات کرتا ہے اور جتنی طرح کے سامعین کو خدمات فراہم کرتا ہے، اس معاملے میں یہ دنیا کے سب سے بڑے نشریاتی اداروں میں سے ایک ہے۔ ریڈیو کے عالم دن کے موقع پر اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا کہ عام لوگوں تک معلومات پہنچانے میں ریڈیو ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔
ریڈیو پلیز اے کروشل رول ان دی فار دی سٹیزنز۔ ریڈیو ٹیکنگ نیوزز ٹو دی کلچرل پروگرامز ٹو دی کامن پبلک۔ سو دی انٹائر کنٹری دی ریڈیو کورڈ almost 70% of the coverage of the radios. The Akashvani played to a medium to connect to the citizen with the government or with the concerned people, content. The radio has a special place. So we are all celebrating the radio day.
چھتیس گڑھ کے بستر ڈویژن کے نارائن پور ضلع کے کچھ ریڈیو سامعین نے معلومات کے اس اہم وسیلے کے سبب خطے میں ترقی کا ذکر کیا۔
हमारे गांव में लगभग 3 रेडियो था मात्र, जो मेरे पिताजी अपने समय में लिए थे, और उस रेडियो को सुनने के लिए पूरे गांव आता था। और एक शिक्षा का प्रद जो भी होता था, समाचार आता था, और शिक्षा में भी जो रेडियो हमारे लिए कारगर था, और जिस हिसाब से आदिवासी हमारा क्षेत्र है, बहुमूल्य है, और हमारा जो यहाँ जितना भी है, नेटवर्क तो था नहीं, कोई था नहीं, केवल साधन तो था वो रेडियो।
रेडियो एक काबिल भरोसा है जो दूर दराज तक लोगों को मरबूत करता है और मुख्तलिफ जबानों में नशरियात फराहम करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
रेडियो के आलमी दिन के मौके पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रसार भारती और यूनेस्को के इश्तराक से एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साय इस तकरीब में मेहमान खसूसी होंगे। रेडियो के आलमी दिन का इस साल का मौजू है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव जैन, यूनेस्को के मवासलात और इत्तलात के इलाकाई मुशीर, मुख्तलिफ सरकारी नुमाइंदे, पद्मश्री अवार्ड याफ्तगान और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आज रेडियो के आलमी दिन के मौके पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने रेडियो के सामईन और उन सभी लोगों को मुबारकबाद दी है जो नशरियात के इको निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए काम करते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP 13वें कौमी इंतखाबात में एक फैसला कुन जीत की जानिब बढ़ रही है। गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 7:30 बजे तक वो 299 पार्लिमानी सीटों में से 208 पर आगे चल रही थी। BNP ने 2/3 अक्सरियत हासिल करने का एतमाद जाहिर किया है। तारिक रहमान और मिर्जा फखरुल समेत सीनियर रहनुमा अपनी सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं। बांग्लादेश जमात इस्लामी और उसके इत्तेहादियों ने तकरीबन 60 सीटें जीतने का दावा किया है, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। इंतखाबी कमीशन ने अभी हतमी नतायज का ऐलान नहीं किया है और उसने ज़ेर इल्तवा अदालती मामलात के सबब 3 हलकों में नतायज को मौतल भी कर दिया है। इंतखाबात कुल मिलाकर पुरम रहे। खेलो दिल्ली दिल्ली खेल महाकुंभ आज से शुरू हो रहा है। इसका मकसद कौमी राजधानी में खेलों के एक मुतहर्रिक माहौल को मुस्तहकम बनाना है और इसे फरोग देना है। दिल्ली के वजीर आशीष सूद ने खेलों से वाबस्ता शख्सियात और फिटनेस कोचेस के साथ इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकार 7 अहम खेल मुकाबलों का एहतमाम करेगी। मर्दों के T20 क्रिकेट आलमी कप में कल रात नई दिल्ली में ग्रुप ए के एक मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराकर T20 आलमी कप में रनों के मामले में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने नामीबिया को जीत के लिए 210 रन का निशाना दिया था, लेकिन उसकी टीम 18 ओवर्स और 2 गेंदों में 116 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है राफेल तैयारों के तारीखी मुआहदे को मंजूरी, मेक इन इंडिया के तहत 3.25 लाख करोड़ रुपए का दिफाई मुआहदा। इसी खबर को दीगर अखबारात ने भी अपने पहले सफे पर जगह दी है। वजीर आजम आज सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफे पर पेश किया है। पार्लियामेंट में सनती ताल्लुकात से मुतालिक जवाबित के तरमीमी बिल 2026 मंजूर किए जाने की खबर को प्रताप और कुछ दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। बांग्लादेश पार्लियामानी इंतखाबात से मुतालिक खबरों को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर नुमाया किया है।
और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मौजूदा बजट इजलास में वक्फे के लिए आज मुलतवी हो जाएगी। अगले महीने की 9 तारीख को फिर इजलास शुरू होगा। रिजर्व बैंक ने किसानों के लिए वसी तर कर्जे की सहूलत की खातिर किसान क्रेडिट कार्ड के जाब्तों के मुसव्वदे पर नजरसानी की है। आज दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत हासिल होने का दावा किया है। बाजाब्ता नतीजों का ऐलान अभी होना बाकी है। और मर्दों के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नई दिल्ली में खेले गए मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से करारी शिकस्त दी, जो रनों के एतबार से उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।